नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में रात के 8:30 बजे और अपने वादे के अनुसार हम हाजिर हैं आपका अपना खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन लेकर। आज मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र और हमारे मेहमान हैं खेल विशेषज्ञ प्रेम प्रकाश। प्रेम प्रकाश जी, स्वागत है आपका।
धन्यवाद धर्मेंद्र।
हम आपके साथ बात करें उससे पहले सुर्खियों पर डाल लेते हैं एक नजर। काठमांडू में भारत ने दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में 13 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते। पुरुषों में सुपर वेट रैपिड एंड ब्लिट्ज शतरंज टूर्नामेंट में अरविंद चिदंबरम ने पूर्व विश्व चैंपियन बुल्गारिया के वैसलिन टोपोलोव को हराया। जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस का मुकाबला जारी। और सुधीर अमन कप बैडमिंटन के फाइनल्स में कल ग्रुप डी के अपने दूसरे मैच में भारत इंडोनेशिया के साथ खेलेगा। शुरुआत करते हैं टेबल टेनिस से। काठमांडू में भारत ने दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 13 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते। इस साल की युवा एशियाई चैंपियनशिप इसकी क्वालिफिकेशन प्रतियोगिता में रविवार को विभिन्न श्रेणियों में भारतीय खिलाड़ियों ने दबदबा बनाया। सुनते हैं रिपोर्ट।
भारतीय टीम ने अंडर 19 लड़कियों, अंडर 15 लड़कों और अंडर 15 लड़कियों के वर्ग में 3 स्वर्ण पदक जीते। भारतीय खिलाड़ियों ने अंडर 19 और अंडर 15 डबल्स और मिक्स डबल्स स्पर्धाओं सहित सभी 6 स्वर्ण पदक भी अपने नाम किए। इसके अलावा भारत ने अंडर 19 लड़कों और लड़कियों के सिंगल्स मुकाबलों में 4 स्वर्ण पदक हासिल किए। टीम स्पर्धाओं में प्रथा वर्तिकार, अनन्या चंदे, हार्डी पटेल और दिया ब्रह्मचारी ने नेपाल को 3-1 से हराकर अंडर 19 लड़कियों का स्वर्ण पदक जीता। प्रतीति पॉल, आरुषि नंदी, अद्विका अरवल और तन्मयी साहा ने अंडर 15 लड़कियों के वर्ग में श्रीलंका को 3-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। अंडर 19 लड़कों के सिंगल्स फाइनल में कुशाल चोपड़ा ने अपने साथी खिलाड़ी आर बालामुर्गन को 3-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। अंडर 19 लड़कियों के सिंगल्स में भी शीर्ष 2 स्थान भारतीयों के नाम रहे, जब अनन्या चंदे ने प्रथा वार्तिकार को 3-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
तो प्रकाश, अगर टेबल टेनिस की बात करें, जो प्रदर्शन काठमांडू में भारतीय जूनियर खिलाड़ियों ने किया है वो निश्चित रूप से सराहनीय है, क्योंकि टेबल टेनिस एक ऐसा स्पोर्ट्स रहा है जिसमें भारत की बहुत ज्यादा ताकत रही नहीं है। चाइना जैसी टीमें हैं उसके सामने भारतीय टीम का प्रदर्शन बहुत निखर कर सामने नहीं आता, लेकिन हाल के दिनों में जो प्रदर्शन आए हैं और जो ये युवा प्रतिभाएं हैं काफी उम्मीदें जगाती
है। जी बिल्कुल, मैं जो है पहले भी कई बार हमारे इस कार्यक्रम में कह चुका हूं कि जिस तरीके से देश में एक नई खेल संस्कृति का उदय हुआ है, वहां हमको ये जो नए खिलाड़ियों के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स जो डेवलप किए गए हैं उसका मुझे लगता है कि बहुत अच्छा ये परिणाम है। और ये वो खिलाड़ी हैं जो कल को जाके देश का प्रतिनिधित्व बड़े इवेंट्स में करेंगे, जहां चाहे एशियन गेम्स की हम बात करें, कॉमनवेल्थ की बात करें या फिर ओलंपिक्स की बात करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि सोचने वाली बात सिर्फ यह है कि हम इस प्रदर्शन को कहां तक लेके जा सकते हैं। तो हालांकि यह हमारी बेंच स्ट्रेंथ है जिसपे मुझे लगता है कि हमको गर्व करना चाहिए।
पोलैंड के वॉर्सो में सुपरवेट रैपिड एंड ब्लिट्ज शतरंज टूर्नामेंट में भारत के अरविंद चिदंबरम ने दूसरे दिन बेहतर प्रदर्शन करते हुए पूर्व विश्व चैंपियन बल्गारिया के वैसलिन टोपोलोव को हराया। साथ ही अंतिम 2 मुकाबले ड्रॉ खेलते हुए वे तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। फ्रांस के अलीरेजा फिरोजा और रूस के व्लादिमीर फेदोसीव 8 अंकों के साथ संयुक्त बढ़त पर हैं। अमेरिका के लेवोन रनियन, रोमानिया के डीक बॉगडेन डेनियल और पोलैंड के डूडा जेन संयुक्त 4th स्थान पर हैं। टूर्नामेंट के रैपिड सेक्शन में अब सिर्फ 3 दौर बचे हुए हैं। टोपोलोव सबसे नीचे चल रहे हैं। प्रज्ञानंदा की बात करें तो वो भी प्रतियोगिता में है लेकिन 5वें स्थान पर संयुक्त रूप से हैं। ये जो टूर्नामेंट है इसमें एक नए सुपरस्टार की कह सकते हैं शतरंज की बिसात पर जो है चमक दिखाई दे रही है भारत के लिए, अरविंद चिदंबरम। ये नाम बहुत जाना पहचाना नहीं है, लेकिन वही जो हम बेंच स्ट्रेंथ की बात करते हैं या युवा उभरते हुए खिलाड़ियों की बात करते हैं उसी की एक बात।
बिल्कुल बिल्कुल, अभी फिलहाल देश में एक अंदर एक ऐसा हर खिलाड़ी के बीच में एक ऐसा कंपटीशन डेवलप हो गया है कि हर कोई चाहता है कि मुझे भी जो है अपने देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाके रिप्रेजेंट करना है। तो अभी जो दौर चल रहा है उसमें भारत में शतरंज से लेके बहुत सारे गेम्स में हमने बड़ी बड़ी इवेंट्स भी करवाए हैं। तो मुझे लगता है कि ये नए नए खिलाड़ी जो रोज निकल कर हमारे सामने आ रहे हैं ये इसी का प्रतिफल है कि हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी बेंच स्ट्रेंथ हर गेम में होती जा रही है। पहले जहाँ 1-2 गेम्स की बात होती थी वहां लगभग हर गेम में अब हम लोग कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व कर रहे देश का।
कोलंबो में महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के दूसरे मैच में कल भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका से मुकाबला करेगी। पहले मैच में भारत ने श्रीलंका को 9 विकेट से हराया था। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
मेजबान टीम के खिलाफ एक तरफा जीत से अपने अभियान का आगाज करने वाली भारतीय महिला टीम अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैदान पर उतरेगी तो उसकी कोशिश जीत की लय बनाए रखने की होगी। कल श्रीलंका पर 9 विकेट की बड़ी जीत के साथ भारतीय टीम ने एक दिवसीय मैचों में लगातार 7वीं सफलता हासिल की। दक्षिण अफ्रीका को भारत ने दोनों देशों की पिछली एक दिवसीय श्रृंखला में 3-0 से हराया था। इस मैच में भी स्पिनरों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। भारतीय टीम हालांकि प्रमुख तेज गेंदबाजों की मौजूदगी में अपने युवाओं के प्रदर्शन पर करीब से नजर रखना जारी रखेगी क्योंकि टीम इस साल के अंत में घरेलू मैदान पर होने वाले 50 ओवर के विश्व कप से पहले एक कोर ग्रुप की पहचान करना चाहती है। उधर दक्षिण अफ्रीका की टीम नए कोच मंडल माशिम्बी की देखरेख में टूर्नामेंट में अपना आगाज यादगार तरीके से करना चाहेगी। दक्षिण अफ्रीका की टीम अनुभवी हरफन मौला मारिजाने कैप के बिना खेलेगी। उन्हें श्रृंखला के लिए आराम दिया गया है। टीम को ऐसे में शानदार लय में चल रही सुनेलुस लॉरा वोलवॉट नादिन क्लार्क और क्लो ट्रायोन से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। मासाबाता क्लास हरफन मौला एनरी डर्कसेन और नादिन डी क्लार्क तेज गेंदबाजी विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। दोनों टीमों के बीच मुकाबला कांटे का रहने की उम्मीद है। आकर्षिता सिंह स्पोर्ट्स स्कैन।
भारतीय महिला टीम ने पहला मैच तो बेहद शानदार तरीके से 9 विकेट से जीता। ये जो दूसरा मैच है ये थोड़ा जो मुकाबला है वो मजबूत टीम के साथ है और दक्षिण अफ्रीका की टीम भारत को अक्सर परेशान करती रही है महिला क्रिकेट की। अगर हम
बिल्कुल कल का मैच जो श्रीलंका के साथ हुआ वो तो लगभग एक तरफा सा मैच था, लेकिन हम ये बात जो है दक्षिण अफ्रीका के साथ नहीं कह सकते क्योंकि उसकी टीम भी मजबूत है। हालांकि भारत का जो प्रदर्शन अभी चल रहा है और पिछले मुकाबलों में जिस तरीके से पिछली श्रृंखला में जिस तरीके से भारत ने जीत दर्ज की थी वो मुझे लगता है वो कॉन्फिडेंस भारतीय टीम के साथ है। लगातार जिस तरीके से अभी रिपोर्ट में कहा गया कि 7 मैचेस भारतीय टीम कंटिन्यू जीत रही है तो और एक कोर ग्रुप की पहचान करना भी है क्योंकि आगे कप है तो मुझे लगता है कि टीम अपनी लय बरकरार रखना चाहेगी। हालांकि दोनों टीमों की अगर बात करें श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका की तो दक्षिण अफ्रीका थोड़ी सी मजबूत टीम है जिसके सामने हमको सतर्क रहना होगा।
जी और ट्रायंगुलर सीरीज काफी अहम है उन तैयारियों के सिलसिले में जिसकी हम बात कर रहे हैं कि इस साल भारत की ही मेजबानी में जो है 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप होना है और भारत अभी तक चैंपियन नहीं बन सका है। अच्छा मौका है इस बार।
बिल्कुल निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जब अगर आप जो है यहाँ का अपना एक जो होम ग्राउंड का या होम कंट्री का जो सपोर्ट है वो उनके पास रहेगा और जिस तरीके से टीम चल रही है तो मुझे लगता है कि आशा की जा सकती है कि इस बार शायद हम लोग जो है जीते वर्ल्ड कप।
जी और उधर आईपीएल क्रिकेट की अगर बात करते हैं तो जयपुर में इस समय राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस के साथ चल रहा है और राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है और जो हमें अंतिम जानकारी मिली थी उसके अनुसार गुजरात ने 12 ओवर में 1 विकेट पर 107 रन बना लिए थे। अंक तालिका में गुजरात टाइटंस 8 मैच में 12 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। राजस्थान रॉयल्स ने 9 मैच खेले जिसमें उसके सिर्फ 4 अंक हैं। तालिका में राजस्थान 10 टीम में 9वें स्थान पर है। अगर राजस्थान की बात करते हैं तो उम्मीदें तो इस टूर्नामेंट के प्लेऑफ तक पहुंचने की लगभग समाप्त हो चुकी हैं। अब उनके लिए मुकाबला और ये टूर्नामेंट सिर्फ इस लिहाज से अहम रह गया है कि अपनी स्थिति वो दर्ज कराएं बेहतर तरीके से।
बिल्कुल मैं थोड़ा सा अपडेट कर दूं, अभी जो है गुजरात ने 14.3 ओवर में 138 रन बना लिए हैं 1 विकेट खोकर और बहुत अच्छे अभी जो है शुभमन गिल और जोश बटलर खेल रहे हैं। राजस्थान की टीम के अगर पिछले 3-4 मैचेज का रिव्यू हम लोग करें तो जैसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कई बार साउथ अफ्रीका की टीम के साथ ये स्थिति हुई वो स्थिति कहीं ना कहीं राजस्थान की टीम की हुई क्योंकि टीम बहुत मजबूत है, बहुत अच्छा खेलती भी है, बहुत बड़े स्कोर भी बनाए हैं और बहुत बड़े स्कोर चेज भी किए हैं लेकिन पिछले कुछ 3-4 मैचेस से स्थिति ये हो गई है तो अब समीकरण लगभग खत्म से हैं लेकिन फिर भी कागजों पे थोड़ी सी उम्मीदें हैं क्योंकि कुछ और टीमें भी जिस तरीके से हम शुरू में बात करें जो मुंबई इंडियंस ने जिस तरीके से अपनी एक लय पकड़ी है जो मजबूत टीम होते हुए भी शुरुआत में बहुत पीछे थी तो हो सकता है कोई पॉसिबिलिटी कहीं पे हो कागजों में फिर भी एक गुंजाइश है। बाकी वैसे क्योंकि अभी 9वें-10वें नंबर पे टीम आ चुकी है तो थोड़ा सा मुश्किल है उन लोगों के लिए।
और दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में कल दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। टीम की नजरें बीच के ओवरों में बेहतर बल्लेबाजी पर टिकी होंगी। अंक तालिका में अभी दिल्ली कैपिटल्स 9 मैच में 12 अंक लेकर 4थे स्थान पर है। दूसरी तरफ कोलकाता के 9 मैच से 7 अंक है और वह 7वें नंबर पर है। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
को अपने पिछले 4 मैच में 2 हार का सामना करना पड़ा है। टीम अब लीग चरण के अंतिम मुकाबलों में लड़खड़ाने से बचना चाहेगी। शीर्ष क्रम में अभिषेक पोरेल ने आक्रामक तेवरों के साथ बल्लेबाजी की है, लेकिन फाफ डू प्लेसी को परिस्थितियों से जल्द सामंजस्य बैठाना होगा। लोकेश राहुल मौजूदा सत्र में दिल्ली के सबसे सफल बल्लेबाज रहे हैं। अब वो सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती की अनुभवी स्पिन जोड़ी के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करना चाहेंगे। केकेआर के पास स्तरीय स्पिनर हैं जो मेजबान टीम को कड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। दिल्ली को करुण नायर से भी अच्छी पारी की उम्मीद होगी। गेंदबाजी में दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने पिछले मैच में 2 विकेट चटकाए थे। तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क अपनी पूर्व टीम केकेआर की कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, जबकि बीच के ओवर में कुलदीप यादव ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। दिल्ली को अपने क्षेत्र रक्षण में भी सुधार करना होगा। केकेआर को प्लेऑफ में अपनी जगह बनाने की उम्मीद जीवंत रखने के लिए ये मुकाबला जीतना होगा। एक और हार के बाद उसकी प्लेऑफ में जगह बनाने की राह काफी मुश्किल हो जाएगी। टीम रन बनाने के लिए रहाणे और युवा अंग कृष रघुवंशी पर काफी अधिक निर्भर है। टीम की गेंदबाजी भी चिंता का विषय है। केकेआर के गेंदबाजों को सलामी जोड़ियों को तोड़ने में दिक्कत हो रही है, जिससे विरोधी टीम उसके खिलाफ बड़ा स्कोर खड़ा कर रही है। दिल्ली के खिलाफ रन गति में अंकुश लगाने के लिए नारायण चक्रवर्ती वैभव अरोड़ा और हर्षित राणा को सामूहिक प्रयास करना होगा। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
और बात अब बैडमिंटन की। सुधीरमन कप बैडमिंटन के फाइनल्स में कल भारत का मुकाबला इंडोनेशिया से होगा। पहले मैच में डेनमार्क से मिली हार के बाद भारत के लिए इस मुकाबले में जीत जरूरी है। रिपोर्ट।
ग्रुप डी के पहले मैच में डेनमार्क के हाथों मिली हार ने भारत की उम्मीदों को तगड़ा झटका दिया है। हालांकि इंडोनेशिया के साथ इस डू और डाई मैच में जीत से उसकी उम्मीदें एक बार फिर से जीवंत हो सकती हैं। प्रमुख खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में भारत के सिंगल्स खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन करना होगा, जबकि डबल्स में इंडोनेशिया की मजबूत टीम की कड़ी चुनौतियों से पार पाना होगा। सिंगल्स खिलाड़ियों को इस मैच में अपने प्रदर्शन को निखार कर उम्मीदों से बेहतर खेलना होगा। शुरुआती मैच में पराजय से भारतीय दल पर दबाव बढ़ा है, लेकिन इससे बाहर निकलने के लिए उसे जीतना ही होगा। इसी मैच से ये तय होगा कि भारत नॉकआउट चरण की अपनी उम्मीदों को कायम रख पाता है या नहीं। प्रमुख डबल्स खिलाड़ियों के गैर मौजूदगी के चलते टीम काफी हद तक सिंगल्स खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर निर्भर हो गई है। इनमें लक्ष्य सेन, HS प्रणय और PV सिंधु शामिल हैं, जिनका हाल का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है। हालांकि इतिहास के पन्नों में दर्ज पिछली कुछ जीत भारतीय खेमे में उम्मीदें जगाती है। खास तौर पर सिंधु का सामना पुत्री कुसुमा वरदानी से होगा, जिनके साथ वो पहले भी कई बार मुकाबला कर चुकी हैं। इंडोनेशिया की मजबूत डबल्स खिलाड़ियों की मौजूदगी के बावजूद भारत का लक्ष्य पूर्व की सफलताओं को दोहराना होगा। उसे थॉमस कप 2022 की अपनी जीत से प्रेरणा लेनी होगी। शुरुआती दौर से बाहर होने के अपने खतरे को टालने के लिए टीम को इस मैच में उच्च स्तर की बैडमिंटन का प्रदर्शन करना होगा। अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैन।
तो सुधीरमन कप का ये बेहद अहम मुकाबला, डेनमार्क ने हमें पराजित कर दिया। इंडोनेशिया भी काफी टफ टीम है, क्या उम्मीदें आपको लगती हैं?
देखिए, बड़े नाम है तीनों के तीनों खिलाड़ी अभी जिनका हम लोगों ने जिक्र किया, और इतिहास भी उनके साथ बहुत जो है बड़ा बना हुआ है, लेकिन कुछ टाइम से लय में नहीं है। हम लोग आशा करते हैं कि वो जल्दी लय में आए और कुछ नई उम्मीदें हम लोगों को दे।
बैंकॉक में भारतीय महिला बेसबॉल टीम ने क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचकर आज एशियाई कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। भारत ने थाईलैंड को 6-5 से हराया और सुपर राउंड चरण में दूसरे स्थान पर रहा। इंडोनेशिया शीर्ष पर रहा। सुपर राउंड से शीर्ष 2 टीमें एशिया कप में पहुंची हैं। चलते चलते एक और खबर, भारत की अंडर 20 महिला फुटबॉल टीम को AFC अंडर 20 महिला एशियाई कप थाईलैंड 2026 क्वालिफायर के ग्रुप डी में रखा गया है। भारत के साथ इस ग्रुप में म्यांमार, इंडोनेशिया और तुर्कमेनिस्तान की टीमें भी शामिल हैं। ये ड्रॉ मलेशिया के कुआलालंपुर में AFC हाउस में आज निकाला गया। ये ड्रॉ जो है वो भारत को दिखाता है कि भारत की टीम को काफी कठिन मुकाबलों का सामना करना पड़ेगा, और इस ग्रुप में पिछली बार के विजेता उत्तर कोरिया भी शामिल है। घड़ी की सुइयां कह रही हैं आज के हमारे स्पोर्ट्स कैन का समय समाप्त हो रहा है। स्टूडियो में आने के लिए शुक्रिया।
धन्यवाद
दोस्तों, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।